अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता। मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर हर दम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, चला कर खुद नुमाई को बसम तन पर लगाता जा। अगर है शौक हर दम लो लगाता जा, तो हर दम लो लगाता जा, तो हर दम लो लगाता जा।
ओम शांति। अपनी ही दुनिया में व्यस्त एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसके पास न धर्म के लिए समय है, न अध्यात्म के लिए, न भक्ति के लिए, न ज्ञान के लिए, संसार की विलासिता में डूबा, ऐसा एक व्यक्ति की ये कहानी है। उसका मित्र उससे कहता है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तुम भी चलो। वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, कारोबार का ऐसा विस्तार है कि मैं कहां हूं। परंतु मित्र पुराना बचपन का है, भक्ति मार्गी है, और मित्र हट करता है कि आपको चलना ही होगा मेरे साथ। और बड़ी मुश्किल से वो व्यापारी मान जाता है। मित्र सोचता है कि तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा इसे लेकर, तो हो सकता है, शायद कदाचित संभवतः हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाए, हृदय में संसार के लिए वैराग उत्पन्न हो जाए। वो मित्र उस व्यापारी को लेकर जाता है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं दोनों, पवित्र नदियों का स्नान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, रामायण भागवत कथाओं का श्रवण करते हैं। पर ये मित्र देखता है कि इस व्यापारी में जरा भी अंतर फर्क नहीं आ रहा, ये तो वैसा कि वैसा ही अब भी कारोबार की ही चिंता में लगा हुआ है। तीर्थ यात्रा में आने के बाद भी वहीं की बातें वही का चिंतन। तो मित्र सोचता है कि क्यों ना मैं इसे कोई ऐसे स्थान पर ले जाऊं जिस स्थान को देखते ही इसके हृदय में वैराग्य जाग जाए। और वो सोचता है मैं इसे शमशान घाट में ले जाता, बहुत बड़ा शमशान घाट, कई सारी चिताएं एक साथ चल रही, इतना विशाल शमशान घाट। और वो मित्र अपने व्यापारी मित्र को उस शमशान घाट में ले जाता है और आश्चर्य होता है मित्र को, जैसे ही देखता है कि ये जो व्यापारी है उसका मित्र, उसका चेहरा ही बदल गया। मन में जो लोभ वृत्ति थी जैसे खो गई, एकदम सीरियस, एकदम संगीन। इस मित्र को लगता है शायद तीर निशाने पर लगाया, तीर निशाने पर लगाया, चिताएं जल रही, जीवन नश्वर है, सब कुछ भस्म होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। शमशान का चित्र देखकर किसे शमशानी वैराग्य न आए। मित्र सोचता है कि शायद ऐसा ही हुआ है, अब शायद संसार की आसक्ति, संसार का लोभ, संसार की विलासिता में डूबी हुई ये आत्मा थोड़ी सी बाहर निकले और वैराग्य को उपलब्ध हो। यहां तक कि वो जो व्यापारी होता है उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। ये मित्र सोचता है, जरूर सोच रहा होगा जीवन व्यर्थ गया, पैसों के पीछे भागते भागते, मित्र संबंधियों के पीछे भागते भागते, जब जब सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसा ही मैं भी जल जाऊंगा एक दिन, सब कुछ बस। मित्र उस व्यापारी से पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो वो व्यापारी कहता है मैं रो इसलिए रहा हूं कि सोच रहा था कपड़ों का व्यापार करने से अगर लकड़ियों का व्यापार किया होता तो आज मैं कितना करोड़पति होता, कहां मैं कपड़ों के व्यापार में लग गया, जबकि मुझे ये समझना चाहिए था लोग कितने जन्म ले रहे और कितने मर रहे हैं। लोग इतनी तादाद में अगर मर रहे हैं तो लकड़ियों की तो आवश्यकता है ही, कितना ना अच्छा होता जब शुरुआत से ये गलती ना कर ली होती, अपनी गलती पर पछता रहा। जैसे जिसकी प्रवृत्ति वैसे ही उसकी सोच। हम भी लंबे समय तक जो सोचते हैं, जो इच्छाएं रखते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव जो पक्का हो गया है उसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। आदत कोई भी हो, शौक कोई भी हो, संस्कार कोई भी हो, जो बार बार पुनरुक्त किया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे बुरी आदतें हैं और बुरे शौक हैं और बुरे संस्कार हैं, बुरी प्रवृत्ति है, बुरे विचार सोच है, जिसकी हमको आदत पड़ गई है, वो पक्की हो गई, आज सुबह की साकार मुरली, आधे कल्प से तुमने क्या बोला है, झूठ, झूठ को तो जैसे क्या समझते हैं, खजाना समझते हैं। झूठ बोलने की तुम्हारी आदत बहुत पक्की है, आदत, शौक, हैबिट्स, एडिक्शन, संस्कार लंबा समय से चला है, आसक्तियां, मित्र संबंधी। जो स्टूडेंट मित्र संबंधियों को याद करते रहते उनको क्या कहा बाबा ने आज? चुस्त जसुस्त। लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप को याद नहीं करते, मित्र संबंधियों को याद करते हैं। यहां तो सबको भूलना है, तुम्हें सबसे वैराग्य है। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों के अलौकिक शौक। आज ही की मुरली में है, तुम्हें सेवा का शौक होना चाहिए। परिचय कैसे होने चाहिए तुम्हारे? रसीले। किसने बताया? अर्थात मुरली बहुत ध्यान से सुनिए, तुम्हारे परिचय कैसे होने चाहिए? रसीले परिचय होने चाहिए। तन मन धन, जो सफल करते हैं उन्हें क्या नाम दिया आज की मुरली में? तकदीरवान। शरीर दुम है। हनुमान जी ने क्या किया था? जला दिया था। किससे? अपनी दुम से। पहले अपनी दुम जलाई और उससे फिर रावण की लंका जलाई। वो दुम देह भान की है। वो जब जल जाएगी तब रावण की लंका को भी आग लगेगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में नई आदतें, नए शोक, अलौकिक शोक हमें निर्माण करने हैं। संसार में बहुत सी हॉबीज होती है, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, भिन्न भिन्न प्रकार की। तो आज हम ऐसी सात नई अलौकिक आदतों की चर्चा करेंगे, शौक, जो हम करते तो है परंतु इस वर्ष इस अव्यक्त माह में और आज की भट्टी में पक्का करना है कि ये सात काम रोज करेंगे। और जैसे कहा, कोई भी नई चीज करो शुरुआत में मुश्किल है, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो तो क्या हो जाती है? फिर आदत। और जब आदत बन जाती है तो आदत अपने आप काम करती है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आदत अवचेतन मन का हिस्सा है, चेतन मन का हिस्सा नहीं है, अपने आप कार्य करने लगती है। सेवा की हॉबी, सेवा का संस्कार, सेवा की आदत, शौक तो सभी को है। सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं। आज हम कुछ और प्रकार के शौक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला शौक सुनना। पहला शौक सुनना। सुनना कैसे? सुनना, तुलसीदास ने लिखा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वो जिनके श्रवण, जिनके कान भगवान की महिमा सुनने के लिए समुद्र के समान इतने विशाल है, जहां पर भी प्रभु की महिमा हो रही है, जहां पर भी ज्ञान का खजाना बांटा जा रहा है, जहां पर भी ज्ञान की बातें हो रही है, वो सब कुछ सुनना। और सुनना ऐसे कि जैसे सुनना धारण करना हो जाए। मुरली क्लास में गए, बैठे, परंतु सुनना ऐसे कि जैसे हम एक हो रहे हैं। जो बातें कानों पर पड़ रही है वो सीधा अंदर प्रवेश कर रही है। इतनी एकाग्रता से सुनना, मुरली सुनना, साकार मुरली। दूसरा, क्लासेस सुनना। यज्ञ में दादिया वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा बहुत सारी अनुभव युक्त क्लासेस है, लक्ष्य रखना है हर दिन कम से कम एक क्लास जरूर सुननी, और केवल सुनना नहीं, सुनते सुनते नोट्स बनाना, पॉइंट्स लिखना। नहीं तो कल सुनाया था, क्लास आ गई, क्या करते हैं? फॉरवर्ड, बेचारी दीनहीन क्लास, अकेली अधूरी तन्हा तन्हा अनाथ घूमती रहती है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक ईमेल से दूसरे मेल में। कोई ग्राहक ही नहीं था उसे सुनने वाला, उसे केवल वो इमोजीज मिलते होते ना, इमोटिकॉन्स, वेरी गुड, पावरफुल, सुपर, जिससे उस क्लास का पेट नहीं भरता, भूखी रह जाती है बेचारी, क्योंकि जिसके पास भी आती है वो सोचता है मैं अपना कल्याण बाद में करूं। आज के स्लोगन में त्याग, सर्वस्व त्याग की पोजीशन में जो है वो है तपस्वी, सोचते हैं हम त्याग करेंगे। पहली कला है आर्ट ऑफ लिसनिंग, पहला शौक है हॉबी ऑफ लिसनिंग, सुनना है। साकार मुरली सुबह क्लास में जाते हैं तो मुरली सुनना, सुनना ऐसे कि एकाग्र दत्त चित्त होकर सुनना, रैप्ट अटेंशन अंग्रेजी में कहा जाता है, इतनी एकाग्रता से, वो है चुस्त स्टूडेंट। सुस्त अर्थात सुनते हुए भी नहीं सुनना, बाबा को देखते हुए भी नहीं सुनना, बाबा के ये महावाक्य कहीं के कहीं जोड़ दी, बाबा ने कहा संसार की बातें और संसार को देखते हुए देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये शुरुआत ही बाबा से ही कर दी कि भगवान को ही देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए अनसुना करते थे। श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना, तो पहली आदत, पहला शौक सुनना, सुबह साकार मुरली सुनना, एकाग्रता से सुनना, दूसरा क्लासेस 24 घंटे में एक क्लास जरूर सुननी है, और हो सके तो वही क्लास फिर से रिपीट करनी है कुछ अंतराल के बाद। लॉ ऑफ इंटरवल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, एक चैप्टर पढ़ लिया आज कि थोड़ा सा गैप दो, फिर उसको रिवाइज करो, बुद्धि ज्यादा ग्रहण करती है। तो क्लास सुनना भी कैसे, लाइन सुनी, पॉज, नोट्स निकालो, कम से कम 10 पॉइंट्स। अब क्लास को बाजू में छोड़ दो और ये जो पॉइंट्स लिखी है इनको एकांत में जाकर बैठकर रिवाइज करो, क्या कहा, क्या कहा, अच्छा ऐसा कहा, और हो सके तो फिर से उसको शाम को रिवाइज करना, और हो सके तो वही क्लास फिर सुनना। यज्ञ के इतिहास की क्लासेस है दादी होगी, ये दूसरा सुनना। तीसरा एक दूसरे का सुनना, मौन रहने की सबसे श्रेष्ठ विधि है कम बोलना नहीं, ज्यादा सुनना। ये लक्ष्य रखना है कि आज मुझे सारे दिन भर सुनना है, तो मौन परिणाम होगा, मुझे सुनना है सामने वाला क्या कह रहा है, उसे रोकना नहीं, उसे टोकना नहीं, बीच में कूद नहीं पड़ना, उसको कहने हम उसको सुनेंगे। अगर सुनने का संकल्प ले लिया तो बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे जो घर गृहस्थी में होते हैं। लक्ष्य ही रखा है कि मुझे सुनना है, बोलना नहीं, अगर प्रश्न पूछा गया तो बोलेंगे, अन्यथा नहीं। ये तीसरा सुनना। चौथा, अंतर मन की आवाज सुनना, क्या कह रहा है मन, अंतस चेतना कॉन्शियस क्या कह रही है। मन कहता है आज तपस्या करेंगे, पर बाहर के संस्कार कहते हैं नहीं, आज तो छुट्टी है, आज मौज मस्ती करेंगे, समय व्यर्थ गवाएंगे, इससे उससे बात करने में लगेंगे, इसको इसको फोन करने में लगाएंगे समय, और अंदर की आवाज दब जाती है। जब तक आत्मा पुरुषार्थ में संलग्न नहीं हो जाती, उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सब मिल जाए, खाने पीने की हजारों वस्तुएं मिल जाए, सुख सुविधाएं की सारी चीजें उसको दे दो, नाम मान दे दो, आत्मा तृप्त ही रहेगी। भोग विलास में उसे डुबो दो, आत्मा तृप्त ही रहेगी, क्योंकि आत्मा की तृप्ति प्रभु प्रेम में है। जब तक ईश्वरीय प्रेम के सागर में चेतना नहीं डूबती, उसे तृप्ति नहीं होती है। आत्मा की सबसे गहरी प्यास, सबसे गहरी, द डीपेस्ट यूनियन की है, मिलन की है, पर यह मिलन नहीं हो पाता आत्मा और परमात्मा का, इसीलिए मनुष्य इस मिलन को शरीर के तल पर खोजता है। इसलिए सारा संसार कामांध है, काम में ऐसा आतुर है, ऐसा डूबा हुआ है। क्यों? काम महाशत्रु ही क्यों है? क्रोध महाशत्रु क्यों नहीं है? लोभ महाशत्रु क्यों नहीं है? जो व्याकुल चेतना होती है काम के लिए, आतुरता जो काम की है, जो एक्साइटमेंट काम विकार की है, वो क्रोध की नहीं, लोभ की नहीं, मोह की नहीं, अहंकार की नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की सबसे गहरी प्यास मिलन की है, परंतु उसे पता नहीं है मिलन कहां मनाना है। वो देह के तल पर मिलन मनाता है, जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दो शरीर अलग 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 कैसे मिल सकेंगे। भ्रम होता है मिलन का, और अनुभव करता है उस अतीन्द्रिय सुख का कुछ क्षण, जो भी खो जाता है तुरंत, परिणाम कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, पश्चाताप, और सारा जीवन इसी में बिता देता है, और वो भी एक गहरा संस्कार बन जाता है। मरने का समय आता है, फिर भी वंस मोर की कामना से व्यक्ति मरता है। वही शरीर की प्यास, वही शरीर की उत्तेजना है। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है, और कोई नहीं। सुनना है अंतर मन की आवाज को। पांचवा, भगवान क्या कह रहा है, मुरली में नहीं, डायरेक्ट मुझे, सीधा उसके सम्मुख बैठना, अपने कंप्लेंट की पिटारी थोड़ी बंद करना और सुनना वो क्या कहता है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, गीत में सुना, तब भगवान से मिल सकेंगे। मंसूर का लिखा यह गीत, मंसूर जिसे लोगों ने मार दिया, बहुत दर्दनाक मौत थी उसको, उन लोगों ने जिनके बीच उसने जन्म लिया था, पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, आंखें फोड़ी, तड़पा तड़पा कर मारा, पर वो गीत में सुना अनल हक गाता ही रहा, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे मैं ये शरीर हूं ही नहीं। विद्रोही था, कहता है ये नमाज छोड़ दो, ये माला छोड़ दो, रुजू छोड़ दो, हटाओ सब, केवल उसके प्यार में खो जाओ। लोगों ने लोगों को लगा ये कुफ्र है, काफिर है, इस्लाम के विरुद्ध बातें कहता है, मार दिया उसे। पर उसकी सोच बहुत गहरी थी, उसका उस खुदा से प्यार बहुत गहरा था, जो उस समय के वो लोग उसे समझ न पाए। उस भगवान की बातों को सुनना, वो मुझे क्या कह रहा है, हम उसे क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत हमने अपने ही कानों से सुना। अब मौन बैठ जाना उसके सामने, एंड लेट हिम स्पीक, आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस। उस मौन में उसको सुनना वो कह क्या रहा है, तो नया शौक कौन सा धारण करना है, सुनने का। मुरली क्लास में गए, ओम शांति, डायरी खोली, मीठे बच्चे, लिखा प्रश्न, लिखा डायरी बंद बाजू, और फिर थोड़ा सा डोलना चालू, हल्की सी झपकी, और फिर मीठे मीठे कहते ही जागरण। एक नजर क्लास की तरफ भी, कहां है हम, और फिर वापस डायरी हाथ में, और थोड़ा सा निरीक्षण भी, किसी ने बीच में देखा तो नहीं हमको, सब ठीक है, कंट्रोल में है बातें। धारणा के लिए मुख्य साथ, एक दो वरदान, स्लोगन, डायरी बंद, आज का काम पूरा हुआ, अब कल मिलेंगे। कुछ कुछ माताएं अपनी डायरी सेंटर पर ही छोड़ के जाती है, कहां घर में लेके जाएंगे, यहीं छोड़ो, वैसे भी कल तो आना ही नहीं। क्लासरूम से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य फुर, सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न उत्तर गायब, नाश्ता बनाते बनाते धारणा के लिए मुख्य सार रफू चक्कर, नाश्ता खाते खाते वरदान उड़ गया, ऑफिस जाते जाते काम करते करते स्लोगन, और शाम तक सारी मुरली छू मंतर। और किसी ने पूछा मुरली कैसी थी आज की, बहुत अच्छी, बहन जी ने बहुत अच्छे से सुनाई, क्या सुनाई वो मत पूछो, बस वो डायरी में है, पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो क्या सुनाई, पहले तो आना चालू करो, एक पॉइंट तो सुना दो, एक क्या सुनाऊं, सारी लिखी है डायरी। मुरली क्लास में जाना, मुरली लिखना सुनना और वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। कुछ और करना पड़ेगा, सुनो भी तो ऐसे सुनो जैसे इस मुरली में मेरे जीवन में जो मिसिंग बात है, मेरे जीवन की जो समस्या है, उसका उत्तर आज इसमें मिलने वाला है। अगर पहले कोई ज्योतिष बता दे, ज्योतिषियों पर ज्यादा विश्वास, कि आज तुम कोई आध्यात्मिक प्रवचन अगर सुन लो ना, तो उसमें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, तो कितना ध्यान से सुनेंगे। तो सुनना अर्थात धारण करना, सुनना अर्थात समाना, सुनना अर्थात एकाग्र हो जाना, सुनना अर्थात उसमें डूब जाना, ये सुनने की परिभाषा है, ये शौक धारण करना है। जैसे गोपियां सुन रही है किसको, कृष्ण को, मुरली को, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, भागवत में आता है, गोपियां कहती है, गोविंद तव कथा अमृतम, तू जो सुनाता है, तू जो बोलता है, तेरी जो वाणी है, तेरी जो मुरली है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है। कल्मषापहम, कल्मष कलंक में है, विकारों में डूबा है, जीवन में कलंक का टीका लगा है। कवि विरडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कवियों ने जिसका गायन किया, ऋषियों ने जिसका गायन किया, तपस्वी जिसकी महिमा गाते हैं, ऐसी तेरी वाणी है, ऐसा तेरा गाना। अमृत की तरह लगते हैं तेरे वचन। और एक बात, मुरली सुनना ब्राह्मण जीवन का एक मुख्य कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है, मर्यादा है। अगर ये ऐसा है तो मुरली कहां पर सुननी चाहिए? सेवा केंद्र में या कार में बैठ के या घर पर बैठ के? सेवा केंद्र में जाके। क्यों? क्योंकि सेवा केंद्र किला है, एक ब्राह्मणों का संगठन किला है। अपने आप कुछ ना कुछ नई टचिंग होगी बैठे बैठे। उस प्रकंपणों के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच, इसलिए जितना हो सके जाना है। तो पहला शौक सुनना, दूसरा शौक मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, मनोमंथन करना। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, अब जो सुना है उसको क्या करना है? चिंतन करना है। जैसे आज की मुरली में टॉपिक्स निकालना है। मधुबन में एक भाई है, रोज मुरली से टॉपिक निकालता है। आज की मुरली में देखो उन्होंने कितने सारे टॉपिक्स निकाले आज की मुरली से। 30 टॉपिक निकाले सुबह की साकार मुरली से। तकदीर जगाते चुस्त स्टूडेंट, पहला टॉपिक। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट श्री कृष्ण, पाठशाला की मौज, कब्रिस्तान की कामचिता, झूठ का खजाना, ममत्व मुक्त वैरागी सच्चे ब्राह्मण, भक्ति मार्ग का पसारा, सर्विस के स्रोत व सबूत, धर्म कर्म का परिवर्तन, साइंस की चकाचौंध, स्वर्ग क्या था सुख, डबल इंजन का साथ, खुदाई खिदमतगार की सिफते, बॉम्ब का खतरा, विनाश की चिंगारी का खौफ, लड़ना झगड़ना सुस्त स्टूडेंट का स्वधर्म टॉपिक, मित्र संबंधियों का सफल कराने की कला, मनमाना भाव का जादुई मंत्र, चढ़ती कला का साधन ऑनेस्टी, बोझ खत्म करने की युक्ति ऑनेस्टी, सच्चा तपस्वी, सर्वस्व त्यागी की पोजीशन टॉपिक्स। मुरली सुनते सुनते ही टॉपिक्स निकालना है, और सारे दिन भर इन टॉपिक्स पर फिर क्या करना है? मनन। इतने तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कम से कम 5 या 3 टॉपिक्स निकाल के रखना है सुबह सुबह सुनते सुनते। और जब भी सारे दिन भर में समय मिले तो उसका क्या करना है? फिर मनन करना है, चिंतन करना है उसके ऊपर। मनन करने की विधि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, क्यों कहा, सोचो, किसको कहा, कब कहा, किसने कहा, किस तरह कहा, ये विधि प्रश्न खड़े करना, उससे मनन निर्माण होगा। प्रश्न नहीं तो मनन भी नहीं। ये संशय वाली बात नहीं कह रहे हैं। एक है संशय, वो तो पार कर चुके हैं, अभी संशय नहीं। अब ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न, चिंतन के लिए प्रश्न निर्माण किए जा रहे हैं। क्यों कहा ये शरीर दुम है, और शरीर इस दुम का गुम हो जाना कर्मातीत अवस्था है, चिंतन। क्यों कहा संसार में झूठ को खजाना समझा जाता है, झूठ से क्या क्या नुकसान होते हैं, पॉइंट्स लिखने, चिंतन। जब हम झूठ बोलते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, अभी अभी चिंतन करो, कम से कम 10 बातें बताओ झूठ बोलने से जो होती है। डर लगता है अंदर से, एक दूसरा, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, तीसरा फास्ट चिंतन चलता है, झूठ बोलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, सच की प्लानिंग नहीं होती है, सच सच सच, एक बार जो बोल दिया वही रहता है, और झूठ जो बोलता है उसको कई बार अपने स्टेटमेंट बदलने पड़ते हैं, अपने बयान, झूठ सत्य जो पहले बोला था वो आखिरी तक वही रहेगा, और झूठ बदलते रहता है। अगला, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और अंदर की खुशी खत्म, और झूठ बोलने का संस्कार पड़ जाता है, बात बात में झूठ बोलता है व्यक्ति, बिना कारण से झूठ बोलता है, छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलता है, फिर विश्वास कम हो जाता है मित्र संबंधियों का, और झूठ से क्या होता है, चेहरे का रंग भी बदल जाता है। कैसे हो जाता है, गोरा गोरा कैसे होता है, पीला पीला, काला काला, ये काला पीला बहुत अंतर है, कड़वा मुख कड़वा होता है, झूठ की नहीं है, झूठ की नहीं है, सत्य की नहीं है, झूठ की नैया हिलेगी डूलेगी नहीं, झूठ की नैया हिलती डुलती नहीं है, सीधा डूबती है, झूठ उस कागज की नाव की तरह है, लिख के रखना है डायरी में, झूठ उस कागज की नाव की तरह है जो ज्यादा समय और ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, और झूठ में बड़े षड्यंत्र करने पड़ते हैं, बहुत षड्यंत्र करने पड़ते, कितनी प्लानिंग लगती है, इसके सामने ये बोलेंगे, उसके सामने थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि गए, बहुत याद रखना है, झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है, सच बोलने वाले को याद ही नहीं रखना पड़ता है, जो है वो बोल दिया एक बार वही है वापस, झूठ बोलने वाले को पूरी लंबी कहानी याद करनी पड़ती है, ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, आज के वरदान में ऑनेस्टी, मनमत परमत मिक्स करके बाप के सामने रखते हैं, चलाते हैं, वो है ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। तो ये सब क्या था, अभी हमने जो किया चिंतन, इसको कहते हैं चिंतन, जब तक चिंतन नहीं तब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है, ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। तो रोज की मुरली से पॉइंट्स निकालने, जैसे आज हमने अभी पॉइंट्स निकाली, संसार के लोग झूठ को खजाना समझते हैं, ये यहां पर झूठ बोलने की तुमको आदत पड़ गई, ये पॉइंट, ये दूसरी हॉबी, ये दूसरा शौक, संसार की कोई भी चीज देखो तो चिंतन चल जाए और उसको ज्ञान के साथ जोड़ दे। तीसरी आदत, तीसरा शौक, पढ़ना, पढ़ना। कई दिनों से जिन्होंने मुरली पढ़ी नहीं, जरा हाथ खड़ा करेंगे, सुनते हैं रेली, पढ़ते नहीं, पढ़ते सुनते डेली पर पढ़ते नहीं, क्या पढ़ना, टाइम नहीं, कोई भी नहीं खड़ा कर रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। शर्म भी तो आती है थोड़ी सी, इंद्र सभा भी है, शर्म भी है, दोनों चीजें साथ साथ, धर्म संकट है, खाली सुनते हैं बस, और सुनते भी ऐसा सुनते हैं कि सुनते हुए नहीं सुनते, इधर से सुना, इधर से गया। पढ़ने का शौक, सबसे पहला मुरली पढ़ना, मुरली सुनने से केवल कुछ नहीं होगा, सुनते समय तो बुद्धि यहां वहां भटक रही है, कहां से कहां जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, कहां पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आ जाते हैं एक घंटे में मुरली सुनते सुनते। इसलिए 24 घंटे में एक बार मुरली जरूर पढ़नी है। दादी जानकी का वो प्रश्न याद है ना, बाबा से क्या कहा था? बाबा से कहा था कि मुझे बहुत देरी हो गई है बाबा, लेट हो गया है, मैं क्या करूं, क्या पुरुषार्थ करूं कि मैं आगे जाऊं? तब दादी को लेट हो गया था, तब वो दुख था कि मुझे लेट हो गया आने के लिए। बाबा ने कहा 6 बार मुरली पढ़ो। दादी ने क्या कहा था? अगर 12 बार पढ़ू तो, और हम अगर होते तो बाबा थोड़ा कम करो ना, ये 6 तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे 6 तो छोड़ो, 1 बार भी मुरली अगर पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, पढ़ना और डेली और हर दिन। सुन तो लेते हैं, पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं, मोबाइल में सुन लेते हैं। सुनना सुनना है, पढ़ना पढ़ना है। हमारी 2 प्रकार की मेमोरी है, ऑरल मेमोरी, विजुअल मेमोरी। एक होता है ऑरल सुनना, एक होती है विजुअल देखना, शब्दों को देखना। ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, दूसरा पेज चालू हो रहा है, ये यहाँ ये यहाँ, उसका अपना इम्प्रेशन पड़ता है। चाहे मोबाइल से पढ़ो या हार्ड कॉपी से पढ़ो, पर पढ़ना जरूर है। पढ़ते समय बहुत सारी बातें जो सुनते सुनते उस एक मिनट के लिए एकदम पोता याद आ गया, एकदम हाथ घुमाने लगे उसके सिर पे, उस टाइम की उतनी पॉइंट तो गई। हम ये थोड़ी ना कहेंगे बहन जी आपने क्या बोला था एक बार फिर से बोलो, तो इज्जत का भी तो सवाल है। इसका मतलब तुम कर क्या रहे थे? पढ़ना तो सबसे पहला काम, रोज 1 बार मुरली पढ़ना जरूर। दूसरा काम पढ़ने का, ज्ञानामृत मैगजीन आती है, कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जरा। बाकी लोग कहेंगे कौन सी मैगजीन, पता है कौन सी मैगजीन की बात कर रहे हैं? और कोई कहते होंगे हाँ आती तो है, रखी रहती है, उसमें हम ये देखते हैं हमारे सेंटर का फोटो या हमारा कोई फोटो। एक पेज भर फोटो, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? हमारा कहाँ है? मनुष्य का मन कैसा है? अगर ग्रुप फोटो मिल जाए और कहा कि आपका ये हमारा फोटो है, सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? अपने आप को। और देखने के बाद ऐसा अगर दिखा आंखें बंद वाला, अच्छा नहीं दिया बिल्कुल, इसको फोटो ही लेने नहीं आया, पहले बोलना तो चाहिए था। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने आप को पहले ढूंढता है। कभी देखेगा अपने मित्र को, अपनी मम्मी पापा, वो नहीं, वो सब बाद में, मैं कहा हूं। ज्ञानामृत हर मास आती है, मास के 10 तारीख के पहले पूरी पढ़ के हो जानी चाहिए। टारगेट क्या टारगेट रखना है? 10 तारीख के अंदर पूरी पढ़ के हो जानी चाहिए, एक एक शब्द। सबके पास आती है, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी भी आती है, पर उसमें से पढ़ना मुश्किल है थोड़ा मैगजीन। जब भी समय मिले, लक्ष्य अगर रख दिया तो अपने आप दिन, नहीं तो अगर फुर्सत, सभी विकारों की जड़ है फुर्सत। टाइम है, क्या करें, चलो कहीं घूमने जाते हैं, चलो कहीं घूमते, ये करते हैं। जिसके पास लक्ष्य है उसको ये सब करने के लिए बिल्कुल समय नहीं, लक्ष्य है ये करना है। हम यहां आ रहे थे चंडीगढ़ फ्लाइट से, तो हम सोच के आए थे कि फ्लाइट के 2 घंटे जो है हमको अव्यक्त मुरली पढ़नी है, कैसे भी करके, बाद में समय नहीं मिलेगा, संडे भरे पहले से ही लक्ष्य रखा सुबह अमृत वेला, क्योंकि दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि बस वो 1.5 घंटा ही था जो खाली है। और गहराई से, और नींद भी आ रही थी, लाइट में, परंतु क्योंकि लक्ष्य रखा हुआ था पढ़ना है कैसे भी करके, पूरा करना है इस काम को, तो उसका अध्ययन वही दो घंटा डेढ़ घंटा फ्लाइट, वो समय सफर करना ही है। जब दृढ़ संकल्प होता है तो नींद आ जाए कुछ भी आ जाए, और उसके बाद जो खुशी होती है करने के बाद बहुत ज्यादा होती है। एक तो संकल्प किया वो सफल हुआ, और दूसरा काम भी पूरा हुआ, ताकि अब अगले समय में अगले काम करेंगे, पेंडिंग नहीं रहेगा। तो पहला मुरली पढ़ना साकार, दूसरा मैगजीन पढ़ना, तीसरा यज्ञ की किताबें हैं जगदीश भाई की लिखी हुई बहुत सारी, बीच बीच में वो किताबें पढ़ते रहे। चौथा स्पार्क की किताबें हैं बहुत सारी, बाबा के महावाक्य जिसमें कंपाइल किए गए हैं ढेर सारे टॉपिक्स है, टीचर्स, ब्राह्मण परिवार, सत्यता, धर्मराज, पुरुषार्थ, बेहद का वैराग्य, छोटी छोटी बुक्स है। एक एक बुक की सीरीज अपनी अपनी चालू करनी है। एक बुक अपने बेड के पास तकिया के नीचे रात को सोने से पहले, वो सीरीज। दोपहर की एक दूसरी सीरीज को अलग जगह रखना, ऑफिस में एक दूसरी किताब रखना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किताब परमानेंट रखी रखना, ताकि उस स्थान पर जाते ही पहला काम बाबा के थोड़े से महावाक्य तीन चार वो पढ़ना, उधर वो सीरीज चालू, इधर ये तीन चार सीरीज एक साथ चालू रहे, छोटी छोटी। पूरी मुरली पढ़ने जाओगे तो आठ आठ पेज की है, मुश्किल है, नहीं होता। इसलिए स्पार्क की है जो किताब है छोटी छोटी, पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी सारी की सारी, पर हार्ड कॉपी हो तो बहुत अच्छा। जब भी मधुबन जाए स्पार्क की ढेर सारी बुक्स लेके आना, ताकि अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर रख देना पढ़ सके। तो स्पार्क की चौथा, पांचवा अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, और ये सबसे अगर टाइम मिला तो संसार में जो महान आत्माएं हुई है, भक्त आत्माएं हुई है, ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुए हैं, उनका अध्ययन करना, तो ये आदत पढ़ने की। तो पहली आदत बताई सुनना, दूसरी आदत मनन करना, तीसरी आदत पढ़ना, चौथी आदत लिखना। रोज एक टॉपिक पर लिखने का अभ्यास करना है, टॉपिक ले लेना छोटा सा कोई भी, किसी त्योहार पर लिखना, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। जैसे आज क्या त्योहार मनाते हैं, लोहड़ी, उसके ऊपर ही लिखना, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या हो सकता है, क्या भस्म करे उस आग में, अलौकिक रहस्य लिखना, क्या क्या डाले उसमें, पहले संसार में क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या किस तरह मनाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है, सात आठ कारण है उसके अलग अलग, किस किस नाम से वो जाना जाता है, उसके कितने सारे नाम है, कितने नाम है, कारण क्या क्या है, किस तरह मनाया जाता है, कहां कहां किस तरह मनाया जाता है, किस तारीख में आता है, क्यों आता है, पहले उस त्योहार की सारी जानकारी, अब उसको अध्यात्म के साथ जोड़ते जाना है एक 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 एक, और फिर लिख लिख लिखने में व्यस्त कर देना है अपने आप को। रोज एक टॉपिक ले लेना, उसके ऊपर लिखना, या फिर जो सुना, जैसे अभी जो क्लास सुन रहे हैं, यहां से जाने के बाद शाम को इसी क्लास के ऊपर लिखना कि हमने क्या क्या पॉइंट सुनी, कम से कम अंदर का छोड़ो, पर वो पॉइंट्स तो याद है, 1 2 3 4 5 उतनी लिख के छोड़ दो, और फिर दूसरे दिन कल, अच्छा ये पॉइंट के अंदर क्या क्या सुनाया था, क्लास की शुरुआत कहां से हुई थी, क्लास किस तरह आगे बढ़ी थी, प्रवाह क्या था, फ्लो क्या था, सोचना है, लिख लिया। कोई कोई है जिनको लिखना नहीं आता है, वो चिंतन करेंगे पढ़ेंगे, अब पढ़ना भी नहीं आता, ऐसे भी है कोई कोई। एक माता थी
जिसको लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। ज्ञान सरोवर में प्रदर्शनी समझा रही थी, प्रदर्शनी। तो एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, कमिश्नर साहब, उनको उसने प्रदर्शनी समझाई अपनी भाषा में, आत्मा परमात्मा परमधाम सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर सत्युग आ रहा है, एकदम नष्ट। और वो तो इतने पढ़े लिखे थे और ये बिचारी अनपढ़। तो प्रदर्शनी पूरी होने के बाद कमिश्नर साहब ने पूछा, ये परमात्मा कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब सुनने के बाद। तो माता ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा, दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं समझता है भगवान क्या है, इतना भी नहीं समझता तुमको कि भगवान कौन है। उसको इतना हर्ट हो गया, एकदम दिल में लग गई बात। वहां से गए सेंटर पर कोर्स कराया, फिर ज्ञान में आ गया उस माता के कारण। वो फिर ये अनुभव सुनाया, कुछ दिनों पहले वरदान था, रूहानी अलौकिक भाषा, मौन की भाषा, भावना की भाषा और नैनो की भाषा, ये है अलौकिक ब्राह्मण जीवन की भाषा। इसके इसका अभ्यास करो, ये सबसे ऊंची भाषा है, लिख ले, ये अभ्यास करना, जो लिख सके, जो नहीं लिख सके उनकी बात और। अगला, अगली आदत, शौक, याद करने का शौक, जो सुना उसको याद करना, जो पढ़ा उसको याद करना, रिकॉल, रिकॉल का शौक। जैसे कल सारे दिन भर में भट्टी में बहुत सारी बातें सुनी, कितनों ने याद करने की कोशिश की, शायद कम होगी, कुछ कुछ है। रात में सोने से पहले कि आज हमने कौन सी नई बातें सीखी, क्योंकि हर आत्मा के पास कुछ तो नया है देने के लिए, हर एक के पास कुछ तो है। जब हम किसी को सुनते हैं तो ये लक्ष्य रखो कि इसके पास कुछ तो नया है जो मुझे ग्रहण करना है, लेना है, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना, अभी अभी ज्ञान में क्यों ना आया, उसके पास भी कोई ना कोई नई पॉइंट है। हमारे अंदर ज्ञान का घमंड ना हो। तीन दिन पहले मुरली में था, ज्ञान की मगरूरी, मगरूरी ना हो, सबसे सीखना है, छोटे बच्चे से भी सीखना है। एक सूफी संत जा रहा होता है, देखता है एक छोटा सा बच्चा मस्जिद जा रहा है दिया लेकर, सूफी संत को लगता है इसकी थोड़ी सी मैं चुटकी, थोड़ी सी हंसी उड़ाता हूं, देखता हूं क्या बोलता है, और उस छोटे से बच्चे से प्रश्न पूछता है, इधर आओ, कहां जा रहे हो, वो कहता है दिया लेके मस्जिद जा रहा हूं। वो पूछता है, ये दिया की जो ज्योत है, रोशनी, ये कहां से आई बताओ। क्या करता है बच्चा, फूंक मार देता है दिए को और कहता है वहीं से आई जहां ये गई। सूफी संत सोचता है, मैं तो अपने आप को बड़ा होशियार और ज्ञानी समझ रहा था, सोचता था इसको देखो कितना आता है, बच्चे ने उसको पाठ पढ़ा दिया। तो ये नहीं समझना ये अभी अभी आया है, ये नहीं समझना ये कन्या अभी अभी ज्ञान में आई है, ये कुमार अभी अभी ज्ञान में आया। अरे वो कुमार जो आया है छोटा सा, पता नहीं कैसी हाई लेवल की प्यूरिटी लेकर आया है, पता नहीं उसके कितने जन्मों के ब्रह्मचर्य उसके साथ साथ काम कर रहा है, कैसी तपस्वी आत्मा आई है, पता नहीं कितने जन्मों में वैरागी होगा, तपस्वी होगा, सन्यासी होगा, जिस वैराग के लिए हम झगड़ रहे हैं और फिर भी वैराग आता नहीं है, इस आत्मा में तो वैराग जन्म जात है, जन्म ही वैराग से हुआ है। संसार जन्मते ही संसार से वैराग है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। इसके लिए किसी को भी छोटा नहीं समझना है। इस यज्ञ में या इस संसार में सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता आगे है, इस संसार में और इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। बाकी कोई कितना भी समय से ज्ञान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करना है, जो सुना तुरंत याद करना है उसको, 24 घंटे के अंदर याद अगर किया जाए तो मेमोरी ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, वो याद रहेगी चीज, नहीं तो भूल जाएगा। 80% हम अगर याद नहीं करते हैं तो वो गया। अगर ये क्लास अभी सुन रहे, इस क्लास में क्या क्या सुनाया, ये बातें अगर 24 घंटे के अंदर स्मरण नहीं की तो गई। सिमर सिमर सुख पावा, सिमरन तुरंत होना चाहिए। 6 घंटे के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करनी। यहां से गए, यहां से चलते चलते घर जा रहे हैं, याद करो क्या क्या सुना, क्या क्या सुना, बिजी कर दो माइंड, रिकॉल। हम अपना बताते हैं आप सबको, क्लास कराई 1 घंटा, क्लास सुनने वाले चले गए। अब उसके तुरंत बाद हम ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे याद करना है क्या क्या सुनाया, नहीं तो अभिमान अहंकार आ सकता है, अच्छा सुनाया अच्छा सुनाया अच्छा सुनाया, इसके लिए विचार आने ही नहीं देते। अभी सुनाया, यहां से तुरंत जाने के बाद दोपहर में सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये जो क्लास थी उसमें क्या क्या सुनाया था, अगर समय मिला तो उसके अंदर में एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या बताया था, खुद ही याद करने की कोशिश करना, रिकॉल। अगली बात छठवीं, डिस्कशन, ज्ञान की क्या करना है आपस में चर्चा। कौन कौन करता है? बहुत कम। आपस में ज्ञान की चर्चा करना है उसके लिए एक संगठन बनाना है, जो कुमार है आपस में मिलके संगठन बनाए, 2 लोग की आवश्यकता है संगठन को, जो युगल ज्ञान में चलते हैं, वो रात में सोने से पहले 9:30 से 10, 9 से 9:30 बैठ के दोनों चर्चा करे, आज बाबा ने क्या सुनाया। जो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है वो रात को थोड़ी देर बैठे चर्चा करे, जो सेवा केंद्र की बहने हैं रात को सोने से पहले आपस में बैठे और चर्चा करे, थोड़ा सा पढ़े और फिर चर्चा करे उसके बाद ही सोए। हमने देखा है कई सेंटरों पर रात्रि क्लास होता है, बहनों का आपस में स्टूडेंट नहीं होते, चर्चा करते हैं ज्ञान की थोड़ी देर और फिर सोते। चर्चा भाषण करना अलग बात है, सेमिनार देना लेक्चर देना सुनना वो अलग, चर्चा अर्थात डिस्कशन, डिस्कशन चालू, आज क्या कहा बाबा ने, अच्छा ये कहा, कौन सा गीत था, तकदीर जगा कर आई, तकदीर फूटती कब है, मुरली में है ना, तकदीर फूट जाती है, ये फूटने, तकदीर फूटना अर्थात क्या, चर्चा करनी। संसार के लोग खजाना समझते, झूठ को कैसे, चर्चा करनी। ऑनेस्टी, जो हूं जैसा हूं कैसे, चर्चा करनी। तपस्वी कौन, सर्वस्व त्यागी की पोजीशन क्या, चर्चा करनी। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण, आज की मुरली में वाक्य है। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। दादी जानकी ने कभी बाबा से कहा था जब ये पॉइंट चालू थी, तो इसी तरह का कि बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, दादी ने कहा बाबा आपको बुरा तो नहीं लगा? ये 2 पॉइंट बाबा की बड़ी सेंसिटिव है। कौन सी? एक तो मुझे सर्वव्यापी क्यों कहा और दूसरा मेरी जगह पर उसका नाम, मैंने किताब लिखी और ऑथर उसको बना दिया। ये बाबा एकदम बाबा को इधर टच होता है ये पॉइंट। एक बार तो यहां तक कह दिया, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा छोड़ूंगा नहीं उसको, एक को देख लूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस होनी चाहिए। एक मुरली में ये भी कहा था, तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा, केस करनी चाहिए तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में घसीट कर लेके जाना चाहिए तुमको। चर्चा करने बैठ के, चर्चा के लिए 2 ही लोगों की आवश्यकता होती है, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, द मोर द मेरियर, बहुत अच्छा, पर 2 लोग, अगर जिसके पास कोई भी नहीं है वो तो बाबा को ही उसकी मुरली सुना दो, बाबा आपको याद है आपने आज सुबह ऐसा कहा था या भूल गए, उसी को सुना देना, अगर कोई भी नहीं है चर्चा करने तो। वो छोटा बच्चा रोज आता है मंदिर में, प्रार्थना करता है और जाता है। पुजारी को आश्चर्य है, सबने सुना है, पूछता है क्या करते हो तुम, कौन सी प्रार्थना करते हो? वो कहता है प्रार्थना मुझे नहीं आती, मुझे एबीसीडी आती है, ए से लेके जेड तक बोलता हूँ। भगवान को कहता है जो प्रार्थना बनानी है बना लो। वैसे ही बाबा को ही सुनाना कि तुमने आज ऐसा ऐसा कहा, गुड, वेरी गुड, अच्छी पॉइंट बताई, आई एम प्राउड ऑफ यू। बच्चे खुश, अच्छी उन्नति कर रहे, तो बाबा को ही उसकी पॉइंट या इमेजिनरी ऑडियंस को सुनाना है। काल्पनिक सभा है, काल्पनिक सभा में काल्पनिक श्रोता बैठे हैं और उनको हम ये बात सुना रहे हैं। लास्ट सातवां निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना, ये सुना, ये लिखा, ये मनन किया, ये सुनाया, ये पढ़ा, अब निष्कर्ष क्या है इसका, मुझे करना क्या है, ये करके ये निकाल के। मुरली तो बहुत अच्छी थी आज की, झूठ खजाना है ये सब, क्या मेरे जीवन में झूठ चल रहा है? मुरली तो बहुत अच्छी थी, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, जो हूं जैसा हूं बाप का हूं, जैसे बाप तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है तुम भी बाप के सामने जो हूं जैसा हूं वैसे ही प्रत्यक्ष हो, ये है ऑनेस्टी। क्या मेरे अंदर ऑनेस्टी है? तपस्वी की परिभाषा, क्या मैं तपस्वी हूं या भोगी, त्यागी हूं या भोगी, क्या हूं, चुस्त हूं या सुस्त, क्या हूं, किस प्रकार का स्टूडेंट हूं? सुन लिया, याद कर लिया, सुना दिया, चर्चा कर ली, निष्कर्ष, अब मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? तो ऐसे ही सात प्रकार के क्या है, शौक। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पहला सुनना, दूसरा मनन करना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना, पांचवा याद कर, पांचवा याद करना, रिकॉल करना, छठवा डिस्कस करना, आपस में चर्चा करना, और आखिरी निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना उसको, इससे हमने क्या निकाला है। जैसे कोई मीटिंग होती है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालता है, इसके ये समरी है, समराइज करना उसको। तो ऐसे ये सात प्रकार के शौक हमें इस ब्राह्मण जीवन में होने चाहिए। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, गीत बजेगा, उसके बाद में फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। ओम शांति।
घड़ी शुक्र।